एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है।
हाँ बिल्कुल।
भले ही हम रोज उस पर सोचते न हो, ये है कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे डेविड गार्लैंड। उनकी एक किताब है द वेलफेयर स्टेट, और ये इस विषय पर मतलब एक बहुत जरूरी दस्तावेज मानी जाती है।
तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कल्याणकारी राज्य आखिर है क्या बला, ये दुनिया में आया कैसे, और आज जब सरकार की भूमिका, सामाजिक सुरक्षा, इन सब पर इतनी बहसें होती रहती हैं, तब इसका क्या मतलब है।
सही बात है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आजकल सरकार की भूमिका, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, इन सब पर लगातार बहस होती है। तो ये सिर्फ नीतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज को समझने का एक नजरिया है।
बिल्कुल, ये सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है। सोचिए जरा, पेंशन योजनाएं हैं, सरकारी अस्पताल है, स्कूलों में मिड डे मील है, बेरोजगारी भत्ता।
हाँ, ये सब चीजें,
ये सब कहीं ना कहीं इसी बड़े विचार कल्याणकारी राज्य से जुड़े हैं। तो गार्लैंड की किताब के दो सारांशों के जरिए हमारा इरादा है इसके सबसे जरूरी पहलुओं को सामने रखना।
हाँ, एक आसान और दिलचस्प बातचीत की शक्ल में।
हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो शुरू कहाँ से करें? पहले लेखक से ही मिल लेते हैं।
हाँ, ये अच्छा रहेगा। डेविड गार्लैंड ये न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कानून और समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, पर वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
अच्छा।
उनकी खासियत है कि वो कई विषयों को जोड़कर देखते हैं, समाजशास्त्र, अपराध विज्ञान, और जिसे कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, मतलब समाज कैसे नियम कायदे लागू करता है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनकी पिछली किताबें, जैसे पनिशमेंट एंड वेलफेयर या द कल्चर ऑफ कंट्रोल। वो इसी पर तो थीं कि आजकल के समाज जुर्म, सजा और सामाजिक समस्याओं से कैसे निपटते हैं।
बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प बात जो गार्लैंड करते हैं वो ये कि वो दंड व्यवस्था या पीनल स्टेट और वेलफेयर स्टेट को अलग अलग नहीं देखते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
वो मानते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ राज्य सजा देकर, समाज से बाहर करके नियंत्रण करता है, तो दूसरी तरफ कल्याणकारी राज्य मदद देकर, लोगों को शामिल करके, समर्थन देकर समाज को साधने की कोशिश करता है।
ये तो बड़ा अनोखा नजरिया है।
हाँ, और उनका ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों समाजों का अनुभव है, तो वो तुलना भी कर पाते हैं। इसीलिए वो कल्याणकारी राज्य की कहानी कहने के लिए इतने सही व्यक्ति हैं।
तो फिर उनकी किताब द वेलफेयर स्टेट क्या कहती है, मतलब उसका निचोड़ क्या है?
देखिए, किताब ये कहती है कि कल्याणकारी राज्य सिर्फ सरकारी स्कीमों का एक बंडल नहीं है। ये अपने आप में एक जटिल सामाजिक संस्था है, समाज का एक बहुत अहम हिस्सा।
सही कहा। और गार्लैंड का सबसे बड़ा तर्क शायद यही है कि कल्याणकारी राज्य कोई मतलब हवा हवाई सपना नहीं था,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद से जो समस्याएं पैदा हुई, जैसे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे में कोई सहारा न होना।
हाँ, ये सब बड़ी दिक्कतें थीं।
उनका एक व्यवहारिक, एक जरूरी समाधान था ये। ये सिर्फ गरीबों के लिए एक सेफ्टी नेट नहीं है, बल्कि आधुनिक पूंजीवादी समाज के ताने बाने का ही हिस्सा है।
बिल्कुल, उसे चलाने के लिए जरूरी है, ऐसा मानते हैं वो।
तो ये किताब हमें एक तरह की ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाती है, दिखाती है कि कैसे 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में इसके बीच पड़े,
फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका सुनहरा दौर आया, पश्चिमी देशों में ये खूब फला फूला,
और फिर कैसे आज ये नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन है, आबादी बदल रही है, बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, राजनीतिक विचारधाराएं बदल रही हैं।
और सबसे अहम बात, ये किताब सिर्फ पॉलिसी के डिटेल्स में नहीं जाती, ये इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक मतलब पर जोर देती है।
हाँ,
ये दिखाती है कि कल्याणकारी राज्य कैसे नागरिक होने के मतलब, समाज में आपसी जुड़ाव, जिसे सोशल सॉलिडैरिटी कहते हैं, और हमारी सामूहिक जिम्मेदारियों के बारे में हमारी सोच को जाहिर करता है।
ये सिर्फ पैसे या सुविधाओं के बारे में नहीं है।
नहीं, ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे रहना चाहते हैं।
चले अब जरा और गहराई में चलते हैं। गार्लैंड कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ गरीबों की मदद करना है?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। गार्लैंड इसे बहुत व्यापक रूप में देखते हैं। उनके अनुसार ये एक ऐसा राष्ट्र राज्य है जहां सरकार मतलब स्टेट अपने नागरिकों की बुनियादी भलाई, बेसिक वेलबींग को सुनिश्चित करने की एक साफ और अहम जिम्मेदारी लेती है।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि ज्यादातर नागरिकों की बात है।
हाँ बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी में भाई कैसे क्या किए? गार्लैंड दो मुख्य स्तंभ बताते हैं।
क्या है वो?
पहला है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब है लोगों की आय को बनाए रखने में मदद करना, खासकर जब वो कमा नहीं पा रहे हों, जैसे बेरोजगारी, बीमारी या बुढ़ापा। और इसका मुख्य जरिया है सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। और ये समझना जरूरी है कि ये खैरात नहीं है।
हाँ, ये दान नहीं है,
ये अधिकार आधारित है,
राइट्स बेस्ड।
अगर आपने सिस्टम में योगदान दिया है, टैक्स या प्रीमियम भरा है, तो जरूरत पड़ने पर सहायता पाना आपका हक है।
अच्छा, और दूसरा स्तंभ?
वो है सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। इसमें राज्य सीधे तौर पर कुछ चीजें या सेवाएं मुहैया कराता है, जैसे सरकारी शिक्षा, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, क्लिनिक वगैरह, या फिर किफायती सरकारी आवास।
यानी जो जरूरी चीजें हैं।
हाँ, जो समाज के बड़े हिस्से के लिए जरूरी मानी जाती हैं।
तो ये सिर्फ नीतियाँ नहीं रहीं, ये सरकार चलाने का एक नया तरीका बन गया।
हाँ।
इसमें बड़े बड़े सरकारी दफ्तर लगते होंगे, बहुत सारे आंकड़े इस्तेमाल होते होंगे।
बिल्कुल, बड़े नौकरशाही तंत्र, आंकड़ों का इस्तेमाल। और एक दिलचस्प बात, गार्लैंड कहते हैं ये नागरिक और राज्य के बीच एक पारस्परिक दायित्व, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन का रिश्ता बनाता है।
यानी एक तरह का लेन देन।
हाँ, कह सकते हैं नागरिक टैक्स और योगदान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और बदले में राज्य सुरक्षा और सेवाएं देकर अपनी।
अच्छा, तो ये सिस्टम आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से था?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका एक इतिहास है। पहले की व्यवस्थाएं, जैसे इंग्लैंड के पुराने गरीबी कानून या सिर्फ दान पुण्य पर आधारित मदद, वो बहुत अलग थी।
कैसे अलग थी?
वो अक्सर स्थानीय स्तर पर होती थी, देने वाले की मर्जी पर निर्भर करती थी, और कई बार उनमें एक तरह का अपमान भी छुपा होता था। कल्याणकारी राज्य इनसे अलग राष्ट्रीय स्तर का और अधिकारों पर आधारित विचार लेकर आया।
तो इसकी शुरुआत कहाँ मानी जाती है?
पहली बड़ी और व्यवस्थित शुरुआत 1880 के दशक में जर्मनी में बिस्मार्क के समय हुई।
बिस्मार्क, वो तो रूढ़िवादी थे ना?
हाँ, मजे की बात यही है, वो कोई समाजवादी नहीं थे। उनका मकसद था जर्मन राष्ट्र के प्रति मजदूर वर्ग की वफादारी बढ़ाना और समाजवादी आंदोलन को कमजोर करना। ये एक राजनीतिक चाल भी थी।
अच्छा।
उनका मॉडल ज्यादातर रोजगार पर आधारित था, जिसे कॉर्पोरेटिस्ट कहते हैं, जहां सरकार, मालिक और मजदूर संगठन मिलकर नीतियां बनाते हैं।
फिर ब्रिटेन का नंबर आया है ना, बेवरेज रिपोर्ट का जिक्र आता है काफी।
हाँ बिल्कुल, 1942 में आई विलियम बेवरेज की रिपोर्ट ने ब्रिटेन के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, जिसमें उनकी मशहूर NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस भी शामिल थी।
उनका नजरिया अलग था।
हाँ, बेवरेज का नजरिया ज्यादा सार्वभौमिक था। उनका विचार था कि हर नागरिक को सिर्फ नागरिक होने के नाते पालने से कब्र तक बुनियादी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने समाज की 5 बड़ी बुराइयों, अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य को खत्म करने का लक्ष्य रखा।
ये ज्यादा नागरिकता आधारित मॉडल हुआ।
सही। और फिर आया वो दौर जिसे गार्लैंड स्वर्ण युग कहते हैं।
हाँ, लगभग 1945 से 1970 के दशक तक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में एक तरह की राजनीतिक सहमति बनी, आर्थिक विकास भी खूब हुआ,
और इस माहौल में कल्याणकारी राज्यों का जबरदस्त विस्तार हुआ। ये आधुनिक समाज की पहचान बन गए।
तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ये कल्याणकारी राज्य असल में करते क्या है, इनका काम क्या है, मकसद क्या है?
गार्लैंड इसके कई जरूरी काम गिनाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी काम है सामूहिक जोखिमों का प्रबंधन।
जोखिमों का प्रबंधन मतलब?
देखिए, जिंदगी में कई तरह के जोखिम हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है, नौकरी जा सकती है। कल्याणकारी राज्य इन जोखिमों का बोझ किसी एक व्यक्ति पर डालने के बजाय उन्हें पूरे समाज में बांट देता है। सामाजिक बीमा इसी का एक तरीका है।
हाँ, सब थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं।
बिल्कुल, ताकि जब किसी पर मुसीबत आए तो उसे सहारा मिल सके।
अच्छा, और क्या काम है?
दूसरा एक बहुत अहम काम है बाजार का सुधार करना और उसका पूरक बनना, कॉम्प्लीमेंटिंग द मार्केट। यहाँ गार्लैंड एक जरूरी बात कहते हैं, कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद का दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है।
साथी कैसे?
ये उसे टिकाऊ बनाने में मदद करता है, ये बाजार की कमियों को दूर करता है। जैसे हो सकता है बाजार मुनाफे के चक्कर में अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं सबको ना पहुंचा पाए।
हाँ, ये तो होता है।
तो राज्य यहाँ आके ये जरूरी चीजें मुहैया कराता है और ये आर्थिक स्थिरता भी लाता है। सोचिए, मंदी के समय अगर लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो वे खर्च करना जारी रखते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है।
ये बात तो सही है।
तीसरा काम?
तीसरा काम है सामाजिक एकीकरण और एकजुटता को बढ़ावा देना,
प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन एंड सॉलिडेरिटी।
जब समाज के ज्यादातर लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उसमें योगदान करते हैं और उससे लाभ पाते हैं,
तो उनमें एक दूसरे से जुड़ाव की भावना आती है।
हाँ बिल्कुल, एक राष्ट्रीय समुदाय होने का एहसास, ये महसूस होता है कि हम सब इसमें साथ हैं, ये सामाजिक असमानता को भी कुछ हद तक कम करने में मदद करता है।
और चौथा,
वो थोड़ा मुश्किल सा शब्द था, डीकमोडिफिकेशन।
हाँ, श्रम का गैर पंडीकरण,
डीकमोडिफिकेशन ऑफ लेबर।
सुनने में भारी है पर मतलब सीधा है। पढ़ने यानी वस्तु, कमोडिटी। बाजार अक्सर इंसान के श्रम को भी खरीदने बेचने की चीज समझता है। कल्याणकारी राज्य लोगों को इस मजबूरी से थोड़ी राहत देता है, थोड़ी आजादी। जैसे अगर आपके पास बेरोजगारी बीमा है तो आप नौकरी छूटने पर तुरंत कोई भी घटिया नौकरी करने को मजबूर नहीं होंगे।
अच्छा, थोड़ी मोहलत मिल जाती है।
हाँ, ये इंसान को सिर्फ बाजार में बिकने वाली चीज होने से बचाता है।
लेकिन फिर 1970 के दशक के बाद कहानी बदलने लगी, चुनौतियां आई, है ना?
हाँ, कई तरफ से आर्थिक झटके लगे, जैसे 1973 का तेल संकट, फिर स्टैगफ्लेशन आया, यानी बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ बढ़ने लगी,
जो पहले सोचा नहीं गया था।
हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और साथ ही एक नई विचारधारा का जोर बढ़ा, नव उदारवादी,
न्यू लिबरल, थैचर, रीगन।
बिल्कुल, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में, रोनाल्ड रीगन अमेरिका में। इन्होंने कल्याणकारी राज्य पर सीधा हमला बोला, कहा कि ये बहुत खर्चीला है, अकुशल है, लोगों को आलसी बनाता है, सरकार पर निर्भर बनाता है,
व्यक्तिगत आजादी में रुकावट डालता है, सभी कहा गया।
हाँ, इसके अलावा समाज भी बदल रहा था, आबादी बूढ़ी हो रही थी, जिससे पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव पड़ा,
परिवारों के रूप भी बदल रहे थे।
हाँ, सिंगल पेरेंट परिवार बढ़े। इन सब दबावों का नतीजा ये हुआ कि कल्याणकारी राज्यों में कटौती और बदलाव का दौर शुरू हुआ।
किस तरह के बदलाव हुए?
पहले जो जोर सार्वभौमिक योजनाओं पर था, यानी सबके लिए, वो अब लक्षित, टारगेटेड योजनाओं की तरफ मुड़ने लगा, मतलब सिर्फ जरूरतमंदों के लिए।
अच्छा।
लाभ पाने की शर्तें, कंडीशनैलिटी कड़ी कर दी गई, बहुत सी सेवाओं का निजीकरण किया गया या उन्हें बाजार के सिद्धांतों पर चलाने की कोशिश हुई। वेलफेयर टू वर्क जैसे कार्यक्रम आए, जिनका जोर था कि लोग जल्दी से जल्दी काम पर लौटें।
तो क्या इसका मतलब है कि कल्याणकारी राज्य खत्म हो रहा है? गार्लैंड क्या कहते हैं इस बारे में?
यहीं पर गार्वी का विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो मानते हैं कि ये सब चुनौतियां और बदलाव असली हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष ये है कि कल्याणकारी राज्य टूट नहीं रहा, बल्कि ढल रहा है, अनुकूलित हो रहा है।
अच्छा, मतलब ये लचीला है।
हाँ, वो इसकी स्थायी लचीलापन की बात करते हैं।
पर ये लचीला क्यों है, इतनी चुनौतियों के बाद भी?
क्योंकि गार्लैंड के अनुसार, जिन बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए इसे बनाया गया था, यानी आधुनिक जीवन के जोखिम, असमानता, अच्छी सेवाओं की जरूरत, वो समस्याएं आज भी मौजूद हैं, शायद ज्यादा जटिल रूप में।
ये बात तो है।
और दूसरी बात, कल्याणकारी राज्य के कई प्रोग्राम्स जैसे पेंशन और स्वास्थ्य सेवा आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कोई भी सरकार उन्हें आसानी से खत्म करने का जोखिम नहीं उठा सकती।
हाँ, ये तो वोट का सवाल भी बन जाता है।
बिल्कुल। तो गार्लैंड का अनुमान है कि भविष्य शायद स्थायी मितव्ययिता, परमानेंट ऑस्टेरिटी का हो सकता है, यानी पैसे की थोड़ी तंगी बनी रहेगी, लगातार सुधार और बदलाव होते रहेंगे, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
तो इस पूरी बातचीत से हम क्या मुख्य बातें या संदेश निकाल सकते हैं, कुछ खास पॉइंट्स?
हाँ, कई हैं। मेरे लिए पहला बड़ा संदेश ये है कि कल्याणकारी राज्य सिर्फ एक सुरक्षा जाल नहीं, बल्कि शासन करने का एक तरीका है, समाज को संगठित करने का एक तरीका है।
हाँ, ये सिर्फ मदद नहीं पहुंचाता।
नहीं, ये तय करता है कि नागरिक और राज्य का रिश्ता कैसा होगा, समाज में जोखिम कैसे बांटे जाएंगे। हम अपने टैक्स या सामाजिक सुरक्षा योगदान को सिर्फ पैसे के लेन देन की तरह न देखें, ये हमारे समाज से जुड़े होने का एक तरीका है।
और दूसरा अहम बिंदु?
दूसरा है पूंजीवाद के साथ इसकी जरूरी, लगभग अनिवार्य साझेदारी। गार्लैंड हमें दिखाते हैं कि ये पूंजीवाद का विरोधी नहीं, बल्कि उसे स्थिर और ज्यादा मानवीय बनाने वाला साथी है।
ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए भी सोचने वाली बात है, है ना?
बिल्कुल। क्या सामाजिक योजनाएं सिर्फ खर्च हैं, या वे बाजार को बेहतर काम करने और लोगों को उसमें शामिल होने में मदद करती हैं? गार्लैंड का इशारा दूसरे विकल्प की तरफ है।
तीसरा, मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि ये कोई आसमान से उतरा विचार नहीं था, ये इतिहास में, खास परिस्थितियों में एक व्यावहारिक आविष्कार था।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं ने इसे अपने जरूरतों के हिसाब से अपनाया। बिस्मार्क का मकसद कुछ और था, बेवरेज का कुछ और।
भारत में भी हम देखते हैं कि अलग अलग सामाजिक योजनाएं अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक वजहों से शुरू हुई।
सही कहा, ये कोई एक पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। चौथा, इसका दोहरा मकसद, रोजकम का प्रबंधन और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना,
एक ही साथ व्यक्ति को सुरक्षा देना और समाज को जोड़ना भी।
हाँ, और यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सबके लिए यूनिवर्सल योजनाएं सामाजिक जुड़ाव को ज्यादा मजबूत करती हैं बनिस्बत उन योजनाओं के जो सिर्फ जरूरतमंदों टारगेटेड के लिए हों। इस पर बहस होती है।
और पांचवा, तमाम संकट की बातों के बावजूद इसकी गजब की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, ये खत्म नहीं हो रहा, ये बदल रहा है।
हाँ, भारत में भी देखें तो आजादी के बाद से सामाजिक सुरक्षा का नजारा कितना बदल गया है। नई योजनाएं आई हैं, पुरानी योजनाओं में बदलाव हुए हैं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
गार्लैंड की किताब में कुछ वाक्य या विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम कुछ पर नजर डाल सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, कुछ बातें बड़ी दमदार हैं। पहला, गार्लैंड कहते हैं कल्याणकारी राज्य केवल सामाजिक नीतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट संस्थागत परिसर है जो सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत जीवन की संभावनाओं को मौलिक रूप से आकार देता है।
इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में?
मतलब ये सिर्फ स्कीमों का जोड़ नहीं, ये हमारे समाज की बनावट का हिस्सा है जो तय करता है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और जिंदगी में हमें क्या मौके मिल पाते हैं।
दूसरा विचार, कल्याणकारी प्रणालियां सामाजिक नागरिकता की विशेष अवधारणाओं को मूर्त रूप देती हैं। ये परिभाषित करती हैं कि राजनैतिक समुदाय से कौन संबंधित है और किन शर्तों पर वे सामाजिक समर्थन का दावा कर सकते हैं।
ये तो बहुत गहरा है। मतलब ये नीतियां तय करती हैं कि कौन हमारा है, किसे मदद का हक है।
हाँ, ये अपने आप में एक राजनीतिक और नैतिक चुनाव है कि किसे शामिल करना है, किसे नहीं।
तीसरा,
कल्याण का स्वर्ण युग व्यक्तियों और परिवारों को भौतिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता और साझा पहचान बनाने के बारे में भी था।
यानी इसका मकसद सिर्फ पेट भरना या छत देना नहीं था, बल्कि लोगों में हम की भावना जगाना, एक साझा पहचान बनाना भी था।
चौथा, समकालीन कल्याणकारी राज्यों के सामने नई आर्थिक वास्तविकताओं और बदलती सामाजिक जरूरतों के अनुकूल होते हुए सामाजिक एकजुटता और वैधता बनाए रखने की चुनौती है।
ये आज की सबसे बड़ी पहेली है, कैसे बदलें भी और लोगों का भरोसा और आपसी जुड़ाव भी बनाए रखें। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल। और पांचवा विचार, कल्याण की राजनीति अंततः अच्छे समाज के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा सामूहिक समर्थन के बीच उचित संबंध के बारे में है।
हाँ, मतलब ये बहस कभी खत्म नहीं होगी कि एक अच्छा समाज कैसा हो, व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी कितनी और समाज की कितनी, ये सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि मूल्यों और राजनीति का सवाल है, हमेशा रहेगा।
तो ये सब जानने के बाद हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे देख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ व्यवहारिक बातें।
हाँ, कई तरीके हैं। पहला तो ये कि हम आज की राजनीतिक बहसों को बेहतर समझ सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई देश स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा खर्च कर रहा है या कोई पेंशन में कटौती कर रहा है,
तो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है।
बिल्कुल, इसके पीछे उस देश का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी संस्थाएं हैं।
दूसरा, ये हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है। सामाजिक नीतियों पर बहस करते हुए हम सिर्फ हाँ या ना कहने की बजाय ये सोच सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन के क्या फायदे और नुकसान हैं।
हाँ, क्या कोई योजना सबके लिए होनी चाहिए या सिर्फ कुछ लोगों के लिए, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सब सवाल हम पूछ सकते हैं।
तीसरा, ये हमारी व्यक्तिगत योजना पर्सनल प्लानिंग में भी मदद कर सकता है। अगर हमें पता हो कि राज्य की तरफ से हमें रिटायरमेंट, स्वास्थ्य या बेरोजगारी के समय क्या सुरक्षा मिल सकती है,
तो हम अपनी बाकी की योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं। हमें पता होता है कि हमें अपनी तरफ से कितना इंतजाम करना है।
और चौथा, हम नई सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन ज्यादा गहराई से कर सकते हैं। जब सरकार कोई नई स्कीम लाती है तो हम गार्लैंड के नजरिए से सवाल पूछ सकते हैं, ये किसे फायदा पहुंचाएगी, क्या ये समाज को जोड़ेगी या तोड़ेगी, क्या ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी या निर्भर।
बिल्कुल, ये हमें एक आलोचनात्मक दृष्टि देता है।
तो कुल मिलाकर इस चर्चा से क्या मुख्य सीख मिलती है आपको?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याणकारी राज्य उम्मीद से ज्यादा टिकाऊ और बदलने में माहिर है। ये ना तो अमर है ना ही मरने वाला है, ये बस वक्त के साथ अपना रूप बदलता रहता है।
और मेरे लिए ये समझना कि ये नीतियाँ कभी भी पूरी तरह तकनीकी या निष्पक्ष नहीं होती, इनके पीछे हमेशा मूल्य, मान्यताएं और राजनीतिक सोच होती है।
सही कहा,
इसलिए जब भी इन पर बहस हो, हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर ये भी देखना चाहिए कि किस तरह के समाज की बात हो रही है, कौन से मूल्य दांव पर हैं।
और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं।
हाँ, जरूर।
क्या कल्याणकारी राज्य से मिलने वाली सुरक्षा लोगों को आलसी बनाती है और जोखिम लेने से रोकती है, या फिर ये सुरक्षा असल में लोगों को एक आधार देती है जिससे वो जिंदगी में बड़े जोखिम उठाने, जैसे अपना कोई काम शुरू करने या नई चीजें आजमाने का हौसला कर पाते हैं?
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे गिरे भी तो कोई संभालने वाला है। ये एक दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।